ओम शांति। शिव बाबा ने अपने बच्चों को कल्प दर कल्प यह पाठ पक्का कराया है कि ड्रामा में हर एक घड़ी हूबहू रिपीट होती है, और इस ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे उन महान विभूतियों की ओर सहसा ही ध्यान चला जाता है जिन्हें बाबा ने स्वयं अपने हाथों से श्रृंगारित कर ज्ञान गंगा स्वरूपा बनाकर सतयुगी सृष्टि स्थापना हेतु तैयार किया है। ऐसी विशेषता युक्त ज्ञान गंगा आदरणीय लीना दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बचपन से ही सब परिवार दीदी जी ज्ञान में चलते हैं, और कहते हैं ना कि होनहार बच्चे के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। आपने ज्ञान सरिता की मधुर आवाज को मात्र 7 वर्ष की आयु में परख लिया था और निश्चय किया कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। सन 1987 से अपना हाथ बाबा को सौंपकर यज्ञ की ज्ञान सरिता बनकर बाबा की सतयुगी योजना को सफल करने में अथक सेवाएं दीदी जी दे रहे हैं। शुरू में 12 वर्ष आदरणीय रमेश भाई जी के साथ दीदी जी ने लीगल फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवाएं दी। फिर 2002 से भुवनेश्वर सब जोन की इंचार्ज है, और अभी तक सुचारू रूप से ब्राह्मण आत्माएं कहें कितनी बहनों को दीदी ने पालना दी है, और साथ ही साथ लाखों आत्माओं के कल्याण के दीदी निमित्त बनी है। उनकी ओजस्वी वाणी ऐसी प्रेरणा स्रोत है जो कई लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। वर्तमान समय दीदी जी डायरेक्टर ऑफ डिवाइन रिट्रीट सेंटर जो भुवनेश्वर में है, उनकी दीदी डायरेक्टर है। तो अभी हम ओजस्वी वाणी से, दीदी जी की ओजस्वी वाणी से सुनेंगे सफलता के सूत्र। आदरणीय लीना दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा, सभी बड़े प्यार से बोले मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया बाबा को, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि कली काल के अंत में जब सारी दुनिया सोई पड़ी है, बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए फिर से बार बार हम बाबा को कहेंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। सभा बहुत सुंदर है पर आगे की सोफा खाली है। सभी टीचर बहनों से अनुरोध है आगे आ जाएं, जहां जो टीचर्स बैठे हैं सभी आ जाएं सोफा में, आगे उठ के आ जाएं, और भी जो चाहते हैं आगे बैठना है आ जाइए, सोफा खाली है। बाबा के घर में देखो कितना प्यारा रिमझिम है, सबको आनंद आ रहा है। दादी जी थे ना, सबसे पूछते थे ठीक से रहे हुए हैं, सबको भोजन ठीक मिलता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो दादी को बता सकते हैं, दादी ऐसा पूछती थी। हाँ, तो बाबा का ये घर हम सभी का अपना घर है। जिनको लगता है कि ये घर मधुबन शांतिवन ये मेरा अपना घर है, वो जरा हाथ उठाए, जिनको लगता है कि मेरा घर है। बहुत अच्छा, मेरे बाबा का घर सो मेरा अपना घर। तो आप सभी भाई बहनों का आपके अपने घर में ही बहुत 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 स्वागत है। देखो कितना प्यारा बाबा है, कितना विशाल दिल, भगवान का घर है तो भगवान खुद विशाल दिल है ही। हम सब बच्चों को बुलाते बड़े प्यार से, हमारी ज्ञान योग से पालना तो होती है लेकिन ब्रह्मा भोजन से भी पालना होती है, ठीक है कि नहीं। रहने करने को भी बड़ी सुंदर व्यवस्था, बेडशीट से लेकर के बाथरूम तक सब कुछ हमको क्लीन, साफ सुथरा, सुंदर मिलता है रहने को, ठीक है कि नहीं। ब्रह्मा भोजन भी रोज रोज वैरायटी खाने को मिलता है, और उसके बाद उतना ही नहीं फिर हमको गिफ्ट भी मिलता है, ठीक है कि नहीं। बाबा के घर से आज आप सभी को सौगात मिलने वाला है, ताकि आप जाएंगे तो जब कभी सौगात को देखेंगे आपको मधुबन का घर अपना घर याद आएगा कि बाबा ने मुझे ये सौगात दी है। तो जो भी हो, आप सभी बाबा के बच्चों का फिर से अपने ही घर में स्वागत है। आज जो कुछ आप सबसे शेयर करना है वो है सफलता का सूत्र क्या है, जीवन में हम सफल कैसे हो सकते हैं। आजकल जो दुनियावी लोग हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और सब जो भी क्या कहें, कॉरपोरेट सेक्टर हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग सभी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, वो ये कि हम जीवन में सफल कैसे हों। और उन लोगों के लिए सफलता का क्राइटेरिया कुछ अलग ही है। सोचते हैं कि झटापट कुछ किया जाए और आगे बढ़ लिया जाए, खूब पैसा कमाया जाए, इसको सफल होना कहा जाएगा। लेकिन देखने में आता है ये जो शॉर्टकट वाला सफलता है कुछ ज्यादा आनंद नहीं देता है। कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो अपने वर्क प्लेस में बहुत सफल होंगे लेकिन फैमिली लाइफ कुछ भी नहीं, बहुत कुछ करने के बाद भी खुद अपने आप को बड़ा खाली महसूस करते हैं। तो जीवन को, उनके जीवन को सफल होना नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा के यहाँ बाबा के बच्चों का क्या है, बाबा हम बच्चों को ऑलराउंड सक्सेसफुल बनाता है, हर एंगल से हम बच्चों को सफल होना है। अगर हम चाहते हैं कि हर एंगल से हमको सफल होना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जीवन में कैसे सफलता पाया जाए। दुनिया में बाबा कहते थे बच्चे आप सभी को एक चीज को प्रत्यक्ष करना है। दुनिया में 5 यूनिक भूल हैं, उनमें से एक भूल को प्रत्यक्ष करना है। 5 पहले यूनिक भूल बाबा कौन कौन से बताते हैं, किसको याद है बताइए। एकज भूल है बच्चे, ये कौन से एकज भूल हैं? सबसे पहला पिता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। दूसरा एकज भूल, हाँ एक्चुअली पहला एकज भूल जो है वो ये है, कौन सा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। एक्चुअली वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, ये भूल है। और आपने कभी बाबा की मुरली में ये सुना है कि बच्चे ठहरो, आपने मुझे ऐसा डिफेम किया है तो मैं धर्मराज के कोर्ट में केस करने वाला हूँ। किसने ये पॉइंट सुना है, हाथ उठाओ, मुरली में सुना है? हाँ, ये मुरली में पॉइंट आती है। बाबा ने ये कहा हुआ है कि तुम बच्चों ने मुझे डिफेम किया, मिट्टी में, पत्थर में, कंकड़ ठिक्कर में मुझे बोला, मुझे इतना डिफेम कर दिया, इसलिए बच्चे भारत की इतनी अधोपतन इसीलिए हुई है। कभी कभी मन में बड़ा ना इस बात के लिए छटपटाहट होती है, बाबा हमने तो बहुत प्यार से आपको कहा आप सर्वव्यापी है, ठीक है कि नहीं। आप सोचो कोई भी भक्त भगवान को डिफेम करने के लिए कभी कहता होगा सर्वव्यापी, कहता होगा नहीं। वो तो इतना प्यार में जब समा जाता है, रम जाता है, तो कहता है जिधर देखता हूं उधर तू है भगवान, तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, सभी जगह हो। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे इस ज्ञान ने, इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आप सोचो इससे भारत का बेड़ा गर्क कैसे हुआ होगा। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना तो अच्छा है ना, भय रहता है और भगवान से प्यार बढ़ता है कि वो सर्वत्र विद्यमान है, तो उसमें बेड़ा गर्क कैसे हो गया, किसको आंसर पता है खाली हाथ उठाओ, पूछूंगी नहीं, लेकिन जिनको आंसर पता है वो हाथ उठाओ। सुंदर, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। बाकी किसी को नहीं पता बाबा क्यों कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एकज फूल है भगवान को सर्वव्यापी कहना। क्या हुआ इससे, ये अज्ञान क्यों है, इस अज्ञान से इतना बड़ा क्या नुकसान हो गया। देखो, इस सारे यूनिवर्स का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, शक्ति प्रदाता कौन है, शक्ति के सूर्य, शक्ति के सागर शिव बाबा हैं। आत्मा ने जब कहा कि भगवान इधर उधर हैं, तो मनुष्य आत्मा की बुद्धि कहाँ गई, इधर उधर। पत्थर में भगवान बोला तो पत्थर में बुद्धि लगाया, जब बुद्धि को पत्थर से लगाया तो बुद्धि कैसी हो गई, पत्थर बुद्धि। अभी कौन सा त्योहार आने वाला है, दो चार छह दिन में होली आने वाला है, पता है होली में किसकी पूजा होती है, क्या पूजा करते हैं होली में, गोबर के उपले बनाते हैं ऐसे ऐसे, हाँ वो ऐसा पकड़ के उसमें गोबर रखा होता है, उसको घुमाते हैं, सब लोग उसकी पूजा करते हैं, देखा आपने, ऐसा होता है होली, नॉर्थ में ऐसा होता है और भी कई स्टेट पे होता है, तो गोबर की पूजा करते हैं उस दिन। माना बुद्धि कहाँ लगाया, गोबर में। अगर गोबर में बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि कैसी होगी, गोबर बुद्धि। तो हमारी जो पत्थर बुद्धि हुई, गोबर बुद्धि हुई, उसका कारण क्या है, भगवान सर्वव्यापी। और उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान क्या हुआ, कनेक्शन कट गया। हमें शक्ति कहाँ से मिलने वाली थी, शिव बाबा से, पतित पावन परमात्मा से, वो कहाँ रहते हैं, परम धाम घर में। अब वहां जाने की बुद्धि जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धि यही भटक रही है, दरवाजे में भगवान, कमरे में भगवान, सोफा में भगवान, टीपॉय में भगवान, हर एक जगह भगवान है, पानी में भगवान, धूल में भगवान। तो यहाँ ही भगवान को ढूंढते ढूंढते हमारा कनेक्शन ऊपर से कट गया, जिसके कारण क्या हुआ, आत्मा शक्तिहीन हो गई। शक्तिहीन आत्मा जो कुछ कर्म करे क्या होता है, जल्दी थक जाएगी, ठीक है कि नहीं। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, उसको बड़ा काम दे दो तो क्या होगा, फटफट फटफट करके आ जाएगा। जिस व्यक्ति में शक्ति नहीं है, उसको को भाई ये जरा पेपर वेट है उठाओ, तो उसमें ही थक जाएगा, है कि नहीं। तो आत्मा जो कि इतनी शक्तिशाली थी, शक्तिशाली होने का कारण क्या है, चार्ज थी, कनेक्टेड थी, वो आत्मा डिस्कनेक्ट हो गई शिव बाबा से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भारत का बेड़ा गर्क हो गया। इसको उसको भगवान बोला, लेकिन किसको नहीं बोला, जो भगवान है उसको ही भगवान नहीं बोला। जिससे बुद्धि लगाना था वहां बुद्धि लगा नहीं, यहां वहां लगाया। आपको मोबाइल चार्ज करना है, आप प्लग इन तो कर नहीं रहे हैं, पावर हाउस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको दीवार से लगा रहे, सोफा से लगा रहे, माइक से लगा रहे, पानी से लगा रहे, चार्ज होगा मोबाइल, नहीं चार्ज होगा। आत्मा की भी वैसी हालत हो गई। तो हम सभी थक हार के एकदम तमो प्रधान अवस्था में आ गए, किस एकज भूल के कारण, हाँ सर्वव्यापी के एकज भूल के कारण। शिव बाबा ने आके क्या बताया कि हे आत्मन, मैं सर्वत्र विद्यमान नहीं हूँ, कहाँ हूँ, मैं इस दुनिया से बहुत पर ब्रह्मलोक शांति धाम परम धाम का रहने वाला हूँ। सुना क्या कहा, कहा देखो शास्त्रों में कितना सुंदर लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी सर्वव्यापी के ज्ञान ने हमें इधर उधर कर दिया। क्या लिखा है, शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्य निरामया, निरामया मध्य ज्योति, सह ज्योति भगवाना। जो शून्य देख रहे ना बाबा, जिसको पोलार बोलते हैं, आकाश तत्व, ये भी आकाश तत्व है, ठीक है कि नहीं। और ये जो पूरा गैलेक्सी है वो आकाश तत्व है, क्या बोलते हैं उसको, आकाश गंगा, ठीक है कि नहीं, सारा आकाश तत्व है, ये शून्य है, लेकिन उसके ऊपर महाशून्य है, महाकाश जिसे बोलते हैं। शून्य मध्य निरामय, एक स्थान है जहां निरामय शांति है, वर्ल्ड ऑफ साइलेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारा साइलेंस, स्वीप साइलेंस होम है, वो क्या हुआ, शून्य मध्य निरामय, निरामय मध्य ज्योति, उस निरामय स्थान में, उस शांति धाम में, उस स्वीट साइलेंस होम में एक ज्योति रहते हैं, सह ज्योति भगवान, वही ज्योति भगवान है। तो क्या करना चाहिए था हमको, हम आत्माओं को अपने बुद्धि बल से उस परमपिता परमात्मा से प्लग इन होना था, कनेक्ट होना था, लेकिन हुए नहीं तो डिस्चार्ज हो गए। अभी क्या करना होगा, बाबा ने फिर से रास्ता बताया, क्या करो बच्चे, इधर उधर बुद्धि मत दौड़ाओ, यहां वहां बुद्धि मत लगाओ, मैं और कहीं नहीं हूं। इवन बाबा ने ये भी कहा है कि जब मैं मधुबन में आता भी हूं, ब्रह्मा के तन में आता हूं, ठीक है बच्चे बच्चों से मिलता हूं, उसमें बच्चों को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करने के लिए क्या करना होगा, जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश करने के लिए मुझे परम धाम में ही याद करना होगा, ठीक है, वही सप्लाई लाइन वही से ही ठीक है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, जिससे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या सुना, शिव बाबा परमात्मा सर्वत्र विद्यमान नहीं, कहाँ रहते हैं, परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, 11 नाम याद रखना परम धाम के, सब निकालना लिस्ट अपनी अपनी और याद रखना, जब किसी को सुनाओ तो एक स्पीड में सुना देना चाहिए। ज्ञान मार्ग में पढ़ा ही है ना, देखो बच्चे जब छोटे होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हाँ टेबल्स कैसे याद करते हैं, घोष रटना पड़ता है, 2 1 जा 2, हाँ 2 2 जा 4, ऐसे करके रटना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ चीजों को रट लेना चाहिए, शिव बाबा के गुणों को रट लेना चाहिए, शिव बाबा के नाम को रट लेना चाहिए, परम धाम के नाम को रटना चाहिए, हाँ और जो भी है। बाबा ने ज्ञान के बहुत सुंदर सुंदर 7 दिन के कोर्स में हर एक दिन के कम से कम 10 पॉइंट्स हैं जिसको हमें अच्छी तरह से रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और बाबा के बच्चों को, कितने भी पुराने बच्चे हैं, फिर से 7 दिन का कोर्स करना चाहिए, भले आप अपने टीचर खुद बन सकते हैं, कोई दीदी मिले नहीं मिले, लेकिन आप खुद कोर्स करिए। बहुत सुंदर सुंदर किताबें हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने लिखे हुए हैं, उनको पढ़िए बैठ करके, 1 वीक कोर्स, कॉरेस्पोंडेंस कोर्स, और क्या है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, अच्छी अच्छी कोर्स की किताबें हैं जिनको बैठ के आप पढ़िए और उसको फिर रिवाइज करिए, देखिए मुझे इसमें से क्या पता था क्या नहीं पता। पहले हर समय प्रदर्शनियां बहुत लगा करती थी, अभी भी कई सेंटर्स वाले लगाते हैं, तो हर एक भाई बहन उसमें अपडेटेड रहता था ज्ञान सुनाते सुनाते, लेकिन अभी कई जगह पे कई बार ऐसा होता है कि हम प्रदर्शनियां ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, तो ज्ञान का खजाना ही नहीं है, उसका मनन चिंतन नहीं हो रहा है, तो फिर मजा नहीं है। तो योग करने जब बैठते हैं, बाबा आप हमारे हो हम आपके हैं, उसके बाद क्या बोलना ही नहीं पता, तो कहते हैं भाई क्या करें, योग कैसे लगाए, लेकिन क्या है, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना भी योग है, भले आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा है, माना योग है। तो कब चलेगा, जब खजाना अंदर होगा तो बबल मारता रहेगा, ठीक है। तो हमने किस पे काम कर लिया, पहला एकज फूल क्या था, वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा एकज फूल बताइए, बताया था ना आपने, क्या बताया था, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं, कौन है, शिव बाबा है। भूल क्या रहा, श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता बता दिया, लेकिन एक्चुअली गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण वो वाला नहीं है, बंसुरी बजाने वाला कृष्ण गीता ज्ञान दाता नहीं है। भगवत गीता के लिखने वाले कौन है, किन्होंने लिखा है, व्यास देव ने लिखा है, बाबा मुरली में भी बताते हैं ना। तो व्यास द्वापायन ने 4 कृष्ण के बारे में बताया है, एक तो वो खुद कृष्ण थे, कृष्ण द्वापायन उनका नाम था व्यास देव का, ठीक है कि नहीं, और दूसरा कृष्ण उन्होंने लिखा है आकर्ष्यते इति कृष्ण, क्या है, आकर्ष्यते इति कृष्ण, जो आत्मा को आकर्षित करे वो कृष्ण है। वो कृष्ण कौन, शिव बाबा। तो एक्चुअली गीता ज्ञानदाता वो वाले कृष्ण है, कृष्ण द्वापायन भी नहीं है, ये जसोदा का बेटा कृष्ण भी नहीं है, और एक कृष्ण की भी उन्होंने बात की है, वो तीनों कृष्ण नहीं है। कौन है? जो आत्मा को आकर्षित करने वाले हैं, जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने वाले हैं, वो कृष्ण भगवत गीता के गायक हैं, वो गीता ज्ञान दाता है, वो गीता के भगवान हैं। लेकिन चूंकि उसमें भी बहुत सुंदर अच्छी बातें हैं, जब कोरा ज्ञान लिख करके उठते हैं भगवत गीता का सीधा सीधा श्लोक और बड़ा गुह्य गुह्य ज्ञान लिख दिया, किन्होंने? व्यास देव जी ने, द्वोपायन व्यास कृष्ण द्वोपायन ने लिख दिया। वो सब कुछ खत्म होने के बाद देखा कि उनको बड़ा आनंद नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान को लिखा, लोगों को प्रदान किया, और उसके बाद भी उनको अंदर से आनंद नहीं आ रहा है। तो नारद जी से उन्होंने बात की, भाई मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? तो नारद, जैसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहानी की बातें हैं, तो नारद जी ने उन्हें कहा, व्यासदेव तुमने ये बड़ा रूखा रूखा ज्ञान लिखा है, ज्ञान तो है बहुत गहरा लेकिन इतना ड्राई है कि साधारण इंसान इससे कोई आनंद नहीं पाने वाला है, तो क्या करना चाहिए? कहा उस ज्ञान में कुछ रमणीकता हो, जब रमणीकता हो तो लोग एसोसिएटेड उसे याद करेंगे। सुना? उन बातों को, उन कहानियों को अगर याद रखेंगे तो ज्ञान उसे एसोसिएट होकर के याद रहेगा। जब तुम ऐसा कुछ करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। जो भी हो, शास्त्रों में बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने भागवत की रचना की, जो कहानियों से भरपूर है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उन्होंने हर शास्त्र को कहानी दिया। भगवत गीता में भी महाभारत की कहानी इंट्रोड्यूस हो गई, हाँ कि नहीं? तब क्या है, हर बात में कहानी है, इसलिए आपको भगवत गीता याद है। कोई भी श्लोक का किस श्लोक से क्या लेना देना है, तो देखना, आपको कहानी याद है तो आपको श्लोक याद है, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान वो भी याद आएगा। तो इसलिए शास्त्रों को कहानी के साथ जोड़ दिया गया है। वो तो तब की बात है, लेकिन मध्यकालीन उसके बाद के युग में भी विष्णुदत्त राजा हुए, उनके चार बेटे थे। पंचतंत्र की कहानी आप जानते हैं, सभी बहुतों ने पढ़ा होगा, पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है, कौवा वाली कहानी, वो कैसे पेबल डाल के पानी भर देता है और पीता है, और दोनों की रेस लगी, किन दोनों की? जोर से बोली, किन दोनों की रेस लगी थी? हाँ, खरगोश की और कछुए की। कछुआ बहुत जल्दी भाग के आगे चला गया, है ना? कछुआ धीरे धीरे गया, और फिर भागा कौन था? खरगोश भागा था। आप देखने गए थे? गए थे देखने? लेकिन देखो, हमें कैसे याद है, जैसे कि सच हो, है कि नहीं? वो कहानी में थोड़ा भी कोई इधर उधर करेगा तो हम कहेंगे, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, कहानी ऐसी थी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें जो मॉरल है, चाहे वो छिप गया लेकिन कहानी याद है। वैसे ही हमारे शास्त्रकारों ने ज्ञान जो भी देना उन्होंने चाह, हम ही लोग थे, बाबा ने कहा, शास्त्र किसने बनाया होगा? हाँ जी, शास्त्रों को बनाया किसने होगा? भक्ति शुरू किसने की होगी? किसने शुरू की भक्ति? हम ही थे सब चीजों में। हाँ, क्योंकि लीडर सोल्स हम ही तो हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम लोगों ने ही सब कुछ, ये भक्ति भी हमने शुरू की, और भगवान सर्वव्यापी हैं, ये भी हमने ही कहा होगा। तो जो भी हमने किया, क्या किया, शास्त्रों में ऐसी कहानी बनाई कि धीरे धीरे ज्ञान छिप गया और कहानियां याद रह गई, ठीक है कि नहीं? तो जो कृष्ण कौन थे, सत्ययुग का जो प्रिंस था कृष्ण, उसको द्वापर युग में ले आए, क्योंकि कहानी बनाई गई इस प्रकार से उसकी, ठीक है? तो क्या हुआ, ज्ञान डाइल्यूट हो गया। बाबा ने कहा ना, भगवत गीता में ज्ञान तो है लेकिन कैसे है? बाबा क्या उदाहरण देते हैं बताइए। हाँ, कैसे है? जैसे आटे में नमक, जब आटा गूंथते हैं ना तब नमक डालते हैं जरूर। हाँ, आजकल तो लोगों को नमक कम खाना चाहिए, इसलिए नहीं भी डालते होंगे, लेकिन डाला जाता है नमक, हाँ, आटे में। तो इतना आटा में कितना नमक डलेगा? हाँ, तो इसलिए इतने बड़े बड़े कहानियों में ज्ञान की गहराई, ज्ञान का सत्यता बहुत कम है, लेकिन उसे ढूंढ के निकालना है। ये जैसे कि बिलोर पिलोर के उसमें से मक्खन निकालना हुआ, बाबा ने आके हमें मक्खन निकाल के हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है कि नहीं? तो हम बच्चे बड़े भाग्यवान हैं। तो क्या सुना कि गीता ज्ञानदाता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, बाबा ने कहा ये आपको सारी दुनिया को सिद्ध करके बताना है। धीरे धीरे देखना, आप देख ही रहे होंगे, सारे विश्व में गीता का मान बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्कूल्स, मतलब देश विदेश में बहुत स्कूलों में, बहुत सारे देशों में भगवद गीता कंपल्सरी कर दिया गया है। पता है क्यों? लोगों में स्ट्रेस बहुत है, वो सोचते हैं जो स्ट्रेस हमारे पास है हमारे बच्चों के पास नहीं हो, इसलिए स्ट्रेस ब्रस्ट करने का, अपने आप को ठीक से ट्रेन करने का, एम्पावर करने का साधन उन्होंने क्या ढूंढा, भगवद गीता पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे बच्चे, क्या कहें, यूरोपियन बच्चे, अमेरिकन, दूसरे दूसरे देशों के बच्चे, वो सारे भगवद गीता का श्लोक चांट करते हैं, जबकि हमें ही नहीं आता होगा यहाँ पे। कभी भारतीय बच्चों ने भी प्रयास नहीं किया होगा भगवद गीता को इतनी अच्छी तरह से चांट करने का, उच्चारण करने का, जितना विदेश के बच्चे कर रहे हैं। और उनका मानना है कि उसमें से उनको बड़ा सुकून मिल भी रहा है, मन को काफी शांति मिलती है। सुना? तो क्या हुआ, ये जो आटे में नमक जितनी सत्यता है, उसको अगर संपूर्ण सत्यता पता चल जाए, बाबा के बच्चे जिस दिन इस बात को प्रूव कर देंगे सारी दुनिया को कि भगवत गीता का भगवान कौन, शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं, उस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सारा विश्व अपने पिता को मानने लग जाएगी, सारी दुनिया जानेगी कि हाँ वो एक पिता हमारा है। क्यों, क्या गड़बड़ी हुई? गीता ज्ञान दाता शिव बाबा को कहो या कृष्ण को कहो, फर्क क्या पड़ता है? पिता पिता नहीं, तो उसका बेटा, पहला बेटा शिव बाबा का कौन? ब्रह्मा बाबा, वही आत्मा तो जाके कृष्ण बनती है, तो उनका नाम अगर ले लिया तो गड़बड़ी कहाँ हुई? क्या गड़बड़ी हो गई बताइए? बाबा जो एकज भूल बताते हैं, माना इस भूल से बहुत गड़बड़ी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। अब आप बताइए कि अगर गीता ज्ञानदाता शिव बाबा दुनिया को पहले से ही पता होता तो क्या गड़बड़ी नहीं होती, और गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण है ये सोचने से क्या गड़बड़ी हो गई है बताइए? ख्याल आ रहा है क्या गड़बड़ी हुई होगी? जब श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता हम मानेंगे तो सभी विश्व की आत्माएं, सब धर्म वाले उनको नहीं मानेंगे। मोर मुकुटधारी कृष्ण को आप लोग मान सकते हैं, मुसलमान भाई कहेगा मुझे नहीं मानना है, क्रिश्चियन कहेंगे हम क्यों कृष्ण को माने, इवन हाँ हो सकता है कि भाई अपने सिख लोग भी नहीं माने, बुद्धिस्ट भी नहीं मानेंगे, ठीक है कि नहीं? तो सारे दुनिया में भगवद गीता की जो मान्यता थी वो कम हो गई, किस लिए? क्योंकि देहधारी देवता श्री कृष्ण को हमने उसका भगवान मान लिया। जिस दिन ये पता चलेगा कि स्वयं निराकार परम शिव बाबा गीता ज्ञान दाता हैं, तो क्या होगा, सब धर्म की आत्माएं भगवत गीता को एक्सेप्ट करने लगेंगी, क्योंकि ज्ञान तो उसमें गहरा है, लेकिन कुछ कहानी बनाते बनाते यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। तो ये दूसरा एकज भूल हुआ। तीसरा एकज भूल और क्या बाबा बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा भूल क्या हो गया है? हाँ, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बता दिया है, उससे क्या हुआ, सब अज्ञान की नींद में सो गए। चित्र याद आ रहा है ना, जो भाई बहने प्रदर्शनी समझाते होंगे, कोर्स कराते होंगे, उनको चित्र याद आएगा, कौन सा चित्र? हाँ, जब ये कहा गया कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है तो क्या हुआ, सब लोग कुंभकर्ण की नींद में सो गए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहन क्या बताती है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है लेकिन बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ है? जैसे एक पेशेंट को ऑक्सीजन देके बचाया जाता है तो कितना बचेगा, ठीक है कि नहीं? वैसे ही कलयुग अभी आपके लिए ही बचा हुआ है, ताकि आप जब संपन्न बन जाएंगे तो कलयुग का विनाश हो जाएगा। आज जयंती दीदी ने क्लास कराया टीचर्स का, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, देश विदेश में कितनी बातें हो रही है। अब देखो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने कहना बंद कर दिया विनाश हो रहा है, हम विनाश के ऊपर फोकस नहीं है, हम किसके ऊपर फोकस्ड है, हम स्थापना के ऊपर फोकस हैं, लेकिन सारी दुनिया अंदर से भयभीत है। हर इंटेलेक्चुअल जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि है वो भयभीत है कि ये दुनिया का क्या होगा, विनाश हो जाएगा और बड़ा खतरनाक विनाश होने वाला है, इस प्रकार से वो लोग सोचते हैं। लेकिन हम बच्चे क्या सोचते हैं, हमारी तो बल्ले बल्ले है। क्यों क्यों? हमारे साथ भगवान है और उसने कहा है कि विनाश के बाद क्या आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, सत्ययुग आने वाला है। बड़ा सुंदर अपना अनुभव सुनाया। हाँ, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं और उन लोगों ने दीदी को बुलाया कि आप भी आइए भाई, इस बारे में ब्रह्मा कुमारी इसका क्या कहना है बताइए। तो हमने हमारी थीम कही और हमने कहा हम आपके प्लेटफॉर्म में आपके साथ काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं काम कर सकते? का आप विनाश पे फोकस्ड हो, इससे दुनिया डरेगी, भय करेगी। हम विनाश पे फोकस नहीं है, हम किस पे फोकस्ड हैं? स्थापना पे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे हम फोकस्ड हैं, क्योंकि जब हमारा परिवर्तन होगा तो नई दुनिया आएगी। स्वर्ग में वही जा सकेंगे जो आत्माएं पवित्र होंगी, श्रेष्ठ होंगी, महान होंगी। तो हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में फोकस्ड हैं, हम विनाश की बातें कहकर डराने वालों में से नहीं है। तो जो भी हो, बहुत सारी और अच्छी बातें देखो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी लोग ब्रह्मा कुमारी दीदियों को बुलाते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं, इतनी इंटेलेक्चुअल्स, बाबा के इतने अनमोल रतन, देखो वो कहाँ कहाँ पहुंच करके कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और सारी दुनिया की आश धीरे धीरे देखना यहाँ आएगी। क्यों? सारी दुनिया में क्या है? भय है। और बाबा के बच्चों के पास क्या है? निश्चिंता है। कैसी निश्चिंता है बताइए, कैसी निश्चिंता है? हमारे भारतीय माइथोलॉजी में हमारे तीन देवता हैं। तीनों देवताओं में से सबसे निश्चिंत कौन से देवता हैं? विष्णु भगवान सबसे निश्चिंत है। क्या कर रहे हैं देखो, कितना सुंदर श्लोक लिखा है, शांताकाराय भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। सुना ना, बहुत सुंदर वो स्तुति स्रोत पूरा है जिसमें दिखाया है कहाँ लेटे हुए हैं विष्णु। विष्णु कहाँ लेटे हुए हैं? शेष सैया, बड़ा नरमदार गद्देदार बिस्तरा है वो। कैसा है? किसका बिस्तरा बना हुआ है? कैसा शयनम है? भुजंग शयनम, सर्पों की सैया है। और समुद्र कैसा है? शांत समुद्र, उसमें बहुत सारी तूफानी लहरें आ रही है। ऐसे समुद्र में, सांपों की सैया में बड़े आनंद से कौन लेटा हुआ है? विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। ठीक है, माना बाबा हम बच्चों को विष्णु बनाना चाहते हैं, भले दुनिया में कितना बड़ा विनाश चल रहा हो, ठीक है कि नहीं, कितना हाहाकार हो, कैसी कैसी परिस्थितियां हो, लेकिन बाबा के बच्चे कैसे होंगे? क्या बना रहे हैं बाबा हम बच्चों को? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। माना क्या बना रहे हैं? दोनों को जोड़ दो तो कंबाइंड रूप क्या है? विष्णु बना रहे हैं। ठीक है, पढ़ना ये सारा स्रोत, जिनको इंटरेस्ट हो देखना कितना सुंदर उसमें लिखा है। कि ऐसी परिस्थिति में जो इस प्रकार से हैं, विष्णु की विशेषताएं हैं, अगर हमें विष्णु बनना है तो क्या क्या विशेषताओं को धारण करना है? तो क्या है जो हम तीसरा एकज भूल की बात कर रहे थे ना, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कह दिया, ये भूल है। बाबा ने हमें क्या बताया? बच्चे केवल 5000 वर्ष का ही एक साइकिल है और ये साइकिल आइडेंटिकल रिपीट होता है, हू बहु इसकी पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? हू बहु इसकी पुनरावृत्ति होती है। किसकी? सृष्टि चक्र की, सृष्टि ड्रामा की। कितने वर्ष में? 5000 वर्ष में। ठीक है कि नहीं? और कैसे होता है? कलयुग के बाद क्या आने वाला है? सतयुग। चूंकि ये अंधकार रात कलयुग है, उसके बाद एकदम सतयुग आने वाला है, तो बीच में एक पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बोलते हैं उसको? पूरा नाम क्या है इसका? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दीदी ने एक बहुत जयंती दीदी ने आज एक बहुत सुंदर सीक्रेट इसके बारे में बताया। क्या बताया कि उनका कहना है कि हाँ, उस साइकिल का बड़ा सुंदर कुछ इंग्लिश नाम बताया, मैं भूल गई हूँ, लिखा तो है लेकिन हाँ भूल गई उसका नाम जो बताया। उन्होंने भी एक बहुत बड़ी घड़ी बनाई हुई है और कहते हैं कि 12 बजने के लिए अभी 100 सेकंड्स बाकी हैं, नॉट इवन 2 मिनट्स, 2 मिनट भी नहीं, 100 सेकंड बाकी है बस। तो माना सोचो कभी कुछ भी कैसा भी हो सकता है। वो सारी चीजें मैं डिस्क्राइब करूं कि दुनिया की क्या सिचुएशन है, वो पूरा एक क्लास है। बहुत सारा समय जाएगा, सब लोग सुनते हैं, हमें तो डरने की भी बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिमशिलाएं पिघल रही हैं, ओजन लेयर में होल हो रहा है, उन लोगों को बिग बैंग का भय है, ब्लैक होल का भय है, इतने सारे मिसाइल्स हैं। कहा कि ये जो सिग्नेचर किया था मिसाइल्स के ऊपर, जो जो हम कौन क्या कहते हैं, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, वो कई अंडरस्टैंडिंग्स को भी कैंसिल किया, मेमोरेंडम ऑफ जो भी उन लोगों ने क्या कहते हैं उसको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए थे, उसको भी उन्होंने डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया, क्लोज कर दिया है। तो उसके बाद कभी कोई भी मिसाइल्स डाल सकता है, कैसी भी हालत दुनिया की हो सकती है, सोचो के बाद मनुष्यों में कितना भय होगा। लेकिन बाबा के बच्चों के, किन बच्चों के मन में बहुत भय है, हाथ उठाओ। किस और जो निर्भय है वो हाथ उठाओ, जिनको कोई भय नहीं। ये देखो भाई, अपने लिए खुद जोरदार ताली बजाइए। जबकि सारी दुनिया को भय है तो हम बच्चों को कोई भय नहीं है। अच्छा, चौथा फिर क्या है? तीन तो पूरे हो गए, चौथा एकज भूल क्या है? बोल दिया था आप लोगों ने, चौथा भूल कौन सा है बोलो? हाँ जी, हाँ, ये जो 84 लाख योनियों वाली बात है, बाबा ने क्या कहा, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं भटकती है, लेकिन एक मनुष्य आत्मा मैक्सिमम कितने जन्म ले सकती है? 84 जन्म ले सकती है। किस शरीर में? मनुष्य के ही शरीर में। मनुष्य आत्मा पशु पंछियों का शरीर नहीं लेती है। एक बहुत सुंदर बुक है दुनिया में, वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग बुक है, मैं समझती हूँ इंटरनेशनल लेवल में, वो है मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। हाँ, वो उसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, बहुत सुंदर कहानी है वो। और वो जो कहानीकार है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें लिख रहा है, वो हिप्नोटाइज करके रिग्रेट करता है। हिप्टोनेटिक रिलेशन क्या है? लोगों को हिप्टोनाइज करके उसके पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्मों तक लेके जाता है। और जिस किसी को उसने हिप्टोनाइज किया वो कई जन्मों तक पीछे पीछे गई, लेकिन वो हमेशा मनुष्य ही थी, पशु पंछी नहीं बनी थी। तो जो भी हो, दुनिया में बहुत लोगों ने साइंटिफिकली भी इसको मानना शुरू किया है कि मनुष्य आत्माएं केवल मनुष्य का जन्म लेती है, पशु पंछी नहीं बनती है। बाबा ने हमें उसमें भी एक और अच्छी बात बताई। क्या बताया? मनुष्य शरीर में ही मनुष्य आत्मा अपने कर्मों का वैसा वैसा फल भोग लेती है। बाबा ये कर्मों के हिसाब किताब जन्म जन्म लेने वाली बात कौन से शास्त्रों में है कहते हैं? गरुड़ पुराण में है, ठीक है कि नहीं? गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? अंत में जिसको जैसा सिमरन होगा वैसा जन्म लेगा। अंतकाल जो स्त्री सुमरे, ऐसी स्मृति में जो मरे, सुकर योनि बलबल अवतरे। हाँ, इस प्रकार की बातें बाबा मुरली में भी कहते हैं। तो जो आत्मा जिस प्रकार की स्मृति से शरीर त्याग करेगा उसको उस प्रकार की प्राप्ति होगी। लेकिन अंतिम समय में स्मृति कौन सी आएगी? जो आपने जीवन सारा स्मृति में रखा होगा, ठीक है कि नहीं? तो वो समझते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर्म किया तो तुम जाके सांप बनोगे, और ऐसा कर्म किया तो जाके सूकर बनोगे। इस प्रकार से डराते रहते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया? भले शरीर मनुष्य का होगा, सूरत मनुष्य की होगी, लेकिन सीरत जो है वो उन पशुओं के समान होगी, है कि नहीं? जो व्यक्ति बहुत शांत होता है, बहुत नम्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मेमने जैसा व्यक्ति है। मेमना माना बकरी का बच्चा होता है ना, मेमना ऐसा समझते हैं। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उनको क्या कहते हैं, सांप की तरफ बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा रोरिंग पर्सनालिटी होता है क्या बोलते हैं, शेर की तरह दहाड़ता है। ठीक है कि नहीं, है तो शरीर मनुष्य का लेकिन सीरत जो है वो इस प्रकार की है। तो बाबा ने क्या हमें बताया, चौथी एकज फूल के लिए क्या कहा, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं घूमती हैं लेकिन मनुष्य का ही शरीर लेती हैं और मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। अब पांचवा और आखिरी फूल कौन सी बात का बाबा कहते हैं जी, सॉरी नहीं वो बात में, पहले बातें हो जाए फिर बाद में देखो समय मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर। पांचवी भूल कौन सी थी, पति त पावनी गंगा नहीं है, पानी की गंगा पतित पावनी नहीं है लेकिन ज्ञान गंगा पतित पावनी है। ठीक है कि नहीं, अगर पानी की गंगा पतित पावनी होती तो उसमें रहने वाले जो मछली हैं और गंगा किनारे जो रोज डुबकी लगा के आते वो कब के उद्धार होके चले गए होते। ठीक है कि नहीं, क्या कहा बाबा ने पतित पावनी के लिए, ज्ञान गंगा, ज्ञान शिव बाबा आकर के जो हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं वो ज्ञान जल ज्ञान अमृत हमें पतित से पावन बनाता है। ठीक है कि नहीं, तो ये पांच एकज भूल हैं जो मनुष्य आत्मा उन्हें किया है, उन्हें हमें सुधारना है, उनको हमें सत्य ज्ञान देना है। और आज जिस बात पे मुख्य हमें सोचना था कि हम सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे सफलता मिलेगी। देखो बाबा कहते हैं महाभारत का युद्ध कब हुआ था, द्वापर के अंत में कि द्वापर के शुरू में, महाभारत कब हुआ था, हां जी हाँ जोर से बोलिए, कब हुआ था महाभारत युद्ध, कलयुग के अंत में महाभारत युद्ध हुआ था, द्वापर युग में कोई महाभारत युद्ध नहीं हुआ था। इसके लिए हमारा कौन सा चित्र है बताइए, महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत में नहीं हुआ था, क्यों, अगर द्वापर युग के अंत में होता तो क्या होता और कब हुआ था, जब होने के बाद ऐसा होता है, कौन सा चित्र है, नाव वाला चित्र, हाँ पथ प्रदर्शनी के लास्ट पेज के अंदर वाले भाग में देखना वो चित्र है, नाव बनाया है और एक नाव में कृष्ण बैठे हैं, वो नाव कहाँ से जा रहा है, द्वापर से कलयुग की ओर, दूसरा नाव कहाँ है, कलयुग में है और कलयुग से निकल चुका है, उसके खिवैया कौन है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी बैठे हैं उनके तन में शिव बाबा आए हुए हैं, वो नाव कहाँ जा रहा है, सतयुग में। अच्छा भगवत गीता में भगवान किस लिए आए हैं, क्या क्या लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामि हम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या हुआ, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, माना उसके बाद तो नई दुनिया अच्छी दुनिया आने वाली होना चाहिए, क्यों, लेकिन महाभारत के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, कौरव मारे गए, पांडव भी पहाड़ों में गल मरे, एक बचा था, कौन बचा था, कौन बचा था, राजा परीक्षित बचे थे, उनको भी क्या हुआ, उनको भी तक्षक ने डसा। ठीक है कि नहीं, हाँ ऐसी कहानियां हैं शास्त्रों में, उसको भी तक्षक ने डस लिया और तक्षक ने जैसे ही परीक्षित को डसा उसके बाद कौन सा युग आया, कलयुग आ गया। तो सत्य धर्म की स्थापना कहाँ हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब मर गए, लड़ने वाले भी, हारने वाले भी, जीतने वाले भी, सब खलास हो गए। लेकिन वास्तव में महाभारत का समय अभी है, कहाँ युद्ध हो रहा है महाभारत का, कहाँ युद्ध हो रहा है महाभारत का, हर मन के अंदर एक महाभारत का युद्ध चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ लीजिए आप वेरीफाई कर लीजिए, क्या मेरे मन में महाभारत का युद्ध चलता है? बिल्कुल चलता है। कैसा चलता है? व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या नहीं करूं, यही द्वंद्व ही महाभारत का युद्ध है। कहां युद्ध लड़ा गया महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में कौन सा युद्ध लड़ा गया? धर्म युद्ध लड़ा गया। उसमें दो पार्टी हैं, कौरव और पांडव। कौरव माना ईश्वर से विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनशंति। और दूसरे कौन है? पांडव। पांडव कौन? प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि विजयंती। ठीक है, तो यहाँ दो ही चल रहे हैं। देखना, कभी कौरव भारी पड़ते हैं, कभी पांडव भारी पड़ते हैं, युद्ध चल रहा है यहाँ पे। ऐसे युद्ध में, कर्म क्षेत्र में, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सकता है? भगवद गीता विजयी होने का शास्त्र है। ये जो युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड इंटरनेशनल, क्या कहें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ले लीजिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लीजिए, किसी भी देश का पॉलिटिक्स ले लीजिए, किसी भी काउंसिल का छोटे से छोटा ले लीजिए, किसी फैमिली का पॉलिटिक्स ले लीजिए, आप देखेंगे सारे पात्र वहां हैं। यहां पे भी कभी कभी बहुत बड़ी परिस्थिति में भी हम बड़े स्थिर रहते हैं। कौन है हम उस समय? कौन है हम उस समय? युधिष्ठिर है। और कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम खड़े हो जाते हैं। कौन है हम? टीम है। ठीक है, और कभी कभी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, मोह की पट्टी, धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और कभी कभी बड़े ट्रिकी चलते हैं। कौन है उस समय? अरे भाई वाह, आप तो सबको पहचानते हैं। अच्छा, तुमने ऐसा किया, सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकता है, हम थोड़ा टेढ़ा होके निकालते हैं उंगली को घी। तो उस समय कौन काम कर रहा है? मामा शकुनी काम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ जो युद्ध हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा? अगर सारी भगवद गीता हम देखें, शुरू का श्लोक ले लो और अंतिम श्लोक ले लो। भगवद गीता का पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक ये है, हाँ, कौन युद्ध को देखना चाहता है, जिसकी आंखें नहीं है, धृतराष्ट्र देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो युद्ध में नहीं आएंगे, राज्य में बैठे हैं, पैलेस में बैठे हैं, उन्हें कौन दिखा सकता था? संजय दिखा सकते थे। क्या थी संजय की विशेषता? उनको तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि प्राप्त था, तो वहां बैठे भी सारे युद्ध का नजारा वहां बता सकते थे। तो भगवद गीता शुरुआत इस प्रकार से होता है कि कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जो मेरे बच्चे और पांडवों के बच्चे आपस में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, हे संजय, तुम मुझे बताओ उनका क्या पोजीशन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये क्यूरियोसिटी है किसकी? धृतराष्ट्र की। उसके बाद भगवद गीता आगे बढ़ता है। उसमें अर्जुन को विषाद होता है, अर्जुन को विषाद से निकालने के लिए भगवान उसको भगवद गीता का ज्ञान सुनाते हैं और सारा 18 अध्याय चलता है। फिर भगवद गीता का 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये 18वें अध्याय का श्लोक है, लेकिन अंतिम श्लोक नहीं है। बताइए, किसी को पता है अंत में किसका उवाच होता है, कौन किसको क्या बोलता है? जो लोग शुरू में थे वही अंत में है। पूछा किसने था? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अंतिम श्लोक है, संजय उवाच, वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भ्रूत ध्रुव नीति मतिर मम। हे राजन, जिस साइड में, जिस तरफ कौन है? स्वयं योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ माना अर्जुन। कैसा अर्जुन? धनुर्धर अर्जुन है, माना पुरुषार्थी अर्जुन है। वही ही, उसी साइड में ही विजय श्री होगा। ये मेरा ध्रुव नीति की तरह, क्या कहे, अटल मत है। मैं ये अटल मत दे सकता हूँ कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी, किसकी होगी, जिसके पक्ष में स्वयं योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ अर्थात पुरुषार्थी अर्जुन है। बहुत बड़ी सीखने वाली बात, बहुत प्रैक्टिकल बात और बहुत ही गुह्य ज्ञान वाला ये श्लोक है। क्या बताया गया इस श्लोक में, अगर इस समर में विजयी होना चाहते, कौन सा समर चल रहा है, इंग्लिश वाला समर नहीं, हिंदी वाला समर, युद्ध कहाँ चल रहा है, यहाँ जो समर चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में विजयी होने का क्या तरीका है, पहली बात क्या करो, योगेश्वर कृष्ण को अपने साथ रखो, हर कार्य योग युक्त होकर शिव पावर कनेक्ट होकर के कार्य करो। किसका हाथ पकड़ो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का हाथ पकड़े रखो। खाली हाथ पकड़ने से नहीं होगा, और क्या करना होगा, धनुर्धर पार्थ भी बनना होगा, अर्थात पुरुषार्थी आत्मा भी बनना होगा। बिना पुरुषार्थ के भी सब कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको पुरुषार्थी भी होना पड़े, पुरुषार्थ भी करना पड़े। जब आप राइट डायरेक्शन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो आपको विजय मिलना अटल है। ध्रुव नितिर मतिर ममा, ये मेरा ध्रुव की तरह अटल मत है कि निश्चित भाव से आपको सफलता मिलेगी। तो अगर श्रेष्ठ सफलता चाहिए क्या करेंगे, बा को साथ रख करके पुरुषार्थ करेंगे। समय हो रहा है, लास्ट में एक और बात इसी सिलसिले में कि हमें कैसा पुरुषार्थी बनना है, उसके लिए एक कहानी है, छोटी सी कहानी, बहुत सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्या वो कहानी है। स्वयंवर में अर्जुन जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कौन सा स्वयंवर था, कौन से स्वयंवर में अर्जुन गए थे, द्रौपदी के स्वयंवर में। क्या करना था वहां पे, मछली की, चलती हुई मछली के रिफ्लेक्शन में उसके आंख को हिट करना था, ठीक है कि नहीं, हाँ, ऊपर देख करके नीचे मारना था, ऐसा था, ठीक है कि नहीं। तो जब जा रहे हैं अर्जुन स्वयंवर में, साथ में कौन जा रहा है, साथ में श्री कृष्ण जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, किसके साथ, अर्जुन के साथ। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाला, कौन है अर्जुन, जरा हाथ उठाए, यहाँ कोई अर्जुन है, अरे भाई ये तो पूरी सभा अर्जुनों की भरी हुई है, ठीक है, अब चलो स्वयंवर में चलते हैं, ठीक है, सब अर्जुन स्वयंवर में जा रहे हैं, साथ में कौन, साथ में कौन, मेरा सखा शिव बाबा, कृष्ण आकर्षयते इति कृष्ण, तो वो कृष्ण जो आत्मा को आकर्षित करने वाले शिव बाबा है वो मेरे साथ है, और हम स्वयंवर में चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है। हे अर्जुन तुम जाना, पहले फोकस करना, मछली को देखना, देखना वो पानी में कैसे चल रही है, उसके बाद उसकी आंखों में फोकस करना, और उसके बाद रिफ्लेक्शन को देखना, फिर देखना उसकी मति क्या है, गति क्या है, आंखों को ऊपर देख करके नीचे देखना, ऐसे तीर पकड़ना, वैसे कमान चलाना, ऐसे ऐसे करके करते रहना। कौन ट्रेनिंग दिए जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण किसको दे रहे हैं, अर्जुन को दिए जा रहे हैं। अर्जुन सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, उसके बाद कहता है एक्सक्यूज मी, ये क्या, जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो आपको मेरे साथ होने की क्या जरूरत है, वो तो मेरे गुरु ने भी मुझे ट्रेनिंग दी है कि मछली की आंख कहाँ है, तीर कैसे मारना है, ऊपर देखना है कि नीचे देखना है, जब सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ तो आपके मेरे साथ होने का फायदा क्या है, आप क्या करोगे। सुना, तब भगवान ने बहुत अच्छी बात कही होगी, क्या कहा होगा बताइए, पुरुषार्थी बच्चों को जो बाबा कहते हैं क्या कहते हैं बोलो, हाँ, हे अर्जुन तुम वो करो कि वो जो तुम कर सकते हो, मैं वो करने वाला हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। सुना, किसी भी कार्य को जब हम करने जाते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज होती है जो हमसे नहीं होने वाली है, हम नहीं कर सकते, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है। उस समय कौन मदद करेगा हमें? तब सर्वशक्तिवान शिव बाबा का रोल है, भगवान का रोल है। तो क्या कहते हैं अर्जुन, अगर तुम वो करते हो जो तुम कर सकते हो, पुरुषार्थी अर्जुन, तुम अगर संपूर्ण पुरुषार्थ करते हो जितना कुछ तुम कर सकते हो, मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते हो। अर्जुन फिर पूछता है, अच्छा भगवान, ऐसा भी कुछ है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसमें मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? तो बोलो भगवान ने क्या कहा होगा, तुम क्या नहीं कर सकते हो? अर्जुन तुम मछली को देख सकते हो, उसकी आंखों को भी देख सकते हो, तुम निशाना भी साध सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम पानी को स्थिर नहीं रख सकते हो ना? पानी को स्थिर रखना मेरा काम है, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्या सुना? हाँ भाई, ताली बजा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसको अपने जीवन में क्या कहते हैं, वो बाबा नहीं कहते हैं बच्चे पल्लू में गांठ बांध लो, सब सुना है ना बाबा की मिली में, पल्लू में गांठ बांधने वाली बात। तो पल्लू में गांठ बांध लें, क्या बांध लें? कि जो कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ वो मेरे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा हैं, वो मेरे लिए करेंगे, तो मेरा विजय सुनिश्चित है। ठीक है, ओम शांति।